इसके बाद जो अगला मरहला था वो था खिलाफत। ये एक निहायत नाजुक मरहला था। अंसार और महाजरीन में ये प्रॉब्लम राइज हो सकता था कि कौन खलीफा वक्त बने। इनको जब इत्तला मिली कि एक मकान पे अंसार जमा हैं और खिलाफत का मसला छिड़ा हुआ है, ये वहां गए और उन्होंने उनको निहायत आराम से समझाया कि अरब कबाइल कुरैश के अलावा किसी की क़यादत कबूल नहीं करेंगे, लिहाजा बेहतर यही है कि महाजरीन में से किसी को खलीफा बनाया जाए। दूसरा, ईमान में पहल करने की वजह से भी महाजरीन का ईमान मुकद्दम था। उनकी बात में सॉलिड रीजन था और अंसार मान गए। उसके बाद हजरत बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये उमर है जिनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई रसूल होता तो उमर होता, और ये अबू उबैदा हैं जिनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमीनुल उम्मत हैं। इन दोनों में से जिसे चाहो खलीफा कबूल कर लो। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पे बैत कर ली। उनके बाद तमाम लोग उठते चले गए और उन्होंने हजरत बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को पहला खलीफा सिलेक्ट कर लिया। यूं खिलाफत राशिदा के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा चुन लिए गए। ए अजीज अपनी बुक अबू बकर द कैलिफ में कहते हैं, ग्रेट मैन केम रोज लाइक द लोड स्टार इन द स्काई, चेंज द कोर्स ऑफ इवेंट्स एंड डाइड हीरोज लीविंग बिहाइंड ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम इनडेलिबल इम्प्रिंट्स फॉर इंस्ट्रक्शंस ऑफ मैनकाइंड। वन सच ग्रेट सोल वॉज अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो द कैलिफ, फर्स्ट ऑफ द कैलिफ टू वॉक ऑन द स्टेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। तो दुनिया की तारीख में पहला मुसलमानों का खलीफा बना और ऐसा मिसाली किरदार छोड़ के चला गया कि तारीख उनको प्रेज किए बगैर रह नहीं सकती, खा मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। खलीफा बन के उनके अंदर जो सादगी थी, जो अमानतदारी थी और हर तरह का सियासी तदब्बुर था, काबिले तारीफ है। खलीफा बनते ही उन्होंने सारे इंतजामी उमूर संभाल लिए। हालांकि जो उनके दिल को चोट होगी हम तो सोच भी नहीं सकते, जो उनको मोहब्बत थी हमारा तो गुमान भी नहीं पहुंच सकता। लेकिन मोमिन क्या है कि मुश्किल के वक्त सब्र और हिम्मत से काम ले, और अगर वो हिम्मत से काम ना लेते तो शायद इतनी स्ट्रांग मुस्लिम हुकूमत कभी भी ना कायम होती। जब ये खलीफा बने तो जो सबसे पहला खुतबा दिया वो भी सुनने वाला है और निहायत मौसर तकरीर किया करते थे। इन्होंने कहा, लोगों खुदा की कसम मेरे दिल में कभी अमारत की ख्वाहिश पैदा नहीं हुई, मैंने कभी खुफिया या एलानिया तौर पर अल्लाह ताला से उसके लिए दुआ नहीं की, लेकिन इस खदशा के पेश नज़र कि कहीं फितना ना बरपा हो जाए मैं इस बोझ को उठाने को तैयार हो गया हूँ। वो बोझ समझा करते थे, वो लोग कुर्सियों के लिए लड़ा नहीं करते थे। आगे फरमाया, लोगो मैं तुम पे हाकिम बनाया गया हूँ हालांकि मैं तुम्हारी जमात में सबसे बेहतर नहीं हूँ। अगर मैं अच्छा काम करूँ तो मेरी अताअत करना, और अगर कज रवि इख्तियार करूँ तो तुम पे मेरी अताअत लाजिम नहीं, मुझे सीधा कर दो। अगर मैं कज रवि करूँ तो मुझे सीधा कर दो। सच्चाई अमानत है और झूठ खयानत। तुम्हारा जयीफ फर्द भी मेरे नजदीक कवी तर है, यहाँ तक कि मैं उसका हक ना दिलवा दूँ, और तुम्हारा ताकतवर शख्स भी मेरे यहाँ जयीफ है जब तक कि मैं उससे दूसरों का हक ना दिलवा दूँ। अगर मैं खुदा और उसके रसूल की अताअत करूँ तो मेरी अताअत करो, और अगर उसकी नाफरमानी करूँ तो तुम पे मेरी अताअत लाजिम नहीं। ये पहला खुतबा था और उन्होंने इसको साबित कर दिया, और हर कदम पे अताअत। सबसे पहला मसला जो उनको खिलाफत के बाद पेश आया वो था उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो के लश्कर की शाम की तरफ रवानगी। ये लश्कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी जमाने में खुद तैयार किया था, और उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो आप जानते हैं कि जैद बिन हारसा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे, वो उनके बेटे थे और वो जंगे मौता में शहीद हो गए थे। लिहाजा अब ईसाइयों से बदला लेने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम की तरफ इस लश्कर को भेजने का इरादा किया और क़यादत इस गुलाम के बच्चे को सौंप दी गई। अगरचे हमको बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद कर दिया था, लेकिन आप देखें कि इनकी क़यादत में बड़े बड़े सहाबा कराम शामिल थे, ये कभी ना भूलें। और कोई उफ तक नहीं करता था कि ये छोटा सा बच्चा हमारा अमीर नहीं। बस उनका क्या रवैया होता था, समयाना व अताना, जो कुछ अमीर वक्त डिसाइड कर ले डन, नो क्वेश्चन, इट्स नॉट टू क्वेश्चन वाई, इट्स बट टू डू एंड डाई, ये होता था उनका मोटो। लिहाजा अब मसला ये पैदा हो गया कि अगर हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ लश्कर को मदीना से बाहर भेज दिया जाए तो तमाम गैर मुस्लिम की नजरें अब मदीना पर लगी हुई थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब इन मुसलमानों का क्या होता है, इनके अंदर वो कुव्वत रहेगी कि नहीं। और ये मौका बहुत अच्छा है, जब मुसलमान परेशान हैं, कंफ्यूज हैं, तो मदीना पे हमला कर दिया जाए। हमला करने वालों में मुशरिकों के साथ साथ बहुत से मुनाफिकीन का भी पूरा इरादा था कि इस मौके से फायदा उठाया जाए। मदीना के सराउंडिंग्स में आप जानते हैं बहुत से ऐसे लोग भी मुसलमान हो गए थे जो ऊपर से तो मुसलमान थे लेकिन अंदर से इस्लाम के मुखालिफ थे। अब जब लश्कर की रवानगी के लिए अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फैसला किया कि ये लश्कर जरूर जाएगा, तो बहुत से सहाबा कराम आए और इनको समझाया कि इन हालात में फौज को इतनी दूर भेजना कोई अकलमंदी नहीं है, जबकि मदीना हर तरफ से खतरात की जद में है। लेकिन इन्होंने कहा कि मदीना में अगर इतना सन्नाटा हो जाए कि जंगली जानवर आके मेरी टांगे नोचे तो मुझे कबूल है, लेकिन जो लश्कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना करने का इरादा किया था उसको मैं कभी नहीं रोकूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के सिर्फ 19 दिन के बाद, ओनली 19 डेज, आप वो सदमा और शॉक सोचे, अनसर्टेनिटी सोचे, मुखालफिन की साजिशों का सोचे और इनकी ईमान की पुख्तगी देखें और दोस्त की दोस्ती देखें कि उनके मिशन को जिंदा रखना है। अब क्या था दोस्ती का हक, जिंदगी में वो जब तक जिंदा थे हर तरह की कुर्बानी, और जब वो चले गए तो अब क्या है कि उनके मिशन को जिंदा रखना है, जो डिसीजन थे उनके उन पे अमल पैरा होना है, फिर नो सेकंड थॉट, उसके बाद इस लश्कर को रवाना कर दिया। और जब लश्कर जा रहा था, आप सोचिए 19 साल उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो घोड़े पे सवार हैं और खलीफा वक्त उस घोड़े की बागें पकड़ के साथ साथ पैदल चल रहे हैं। उन्होंने कहा या तो आप घोड़े पे सवार हो जाइए या मुझे इजाजत दे दें कि मैं ही नीचे उतर आऊं। कहने लगे तुम मुझे अजर से महरूम करना चाहते हो, गाजी जो जहाद के लिए जा रहे हैं उनके साथ जितना कदम तय किया जाए उतना अजर मिलता है साथ चलने वाले, मुझे मेरे अजर से महरूम ना करो। उसके बाद उनको ये नसीहतें की और ये है इस्लामी इखलाक जंग में जो हमको इनकी नसीहतों से पता चलते हैं कि मुसलमान जंग की हालत में भी इखलाक का दामन हाथ से नहीं जाने देता। उनको ये नसीहत की, खयानत ना करना, माल ना छुपाना, बेवफाई से बचना, किसी के आज़ा ना काटना, बूढ़ों बच्चों और औरतों को कत्ल ना करना, खजूरों और फल लाने वाले दरख्तों को खाने के अलावा किसी और गर्ज के लिए मत काटना और जानवरों को खाने के अलावा मत ज़बह करना, नो डिस्ट्रक्शन। और इस तरह ये लश्कर इनके अपने डिसीजन की वजह से चला, सहाबा कराम राजी नहीं थे। लेकिन ये याद रखें, मोमिन तवक्कुल करता है लेकिन साथ साथ दुनियावी असबाब पूरे तैयार रखता है, लिहाजा ये दफाए मदीना से गाफिल नहीं थे। इनको खूब पता था कि मदीना पे हर तरफ से खतरा है, लिहाजा इन्होंने मुख्तलिफ छोटे छोटे दस्ते मदीना मुनवरा के अंदर बनाए और उनके ऊपर मुख्तलिफ सहाबा कराम को उनका अमीर मुकरर कर दिया। जैसे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक दस्ते का, हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को दूसरे दस्ते का, हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु को तीसरे दस्ते का और हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کو مختلف دستوں کا امیر بنایا، اور یہ جو ڈفرینٹ 6 لشکر تھے ان کو مختلف راستوں پہ متعین کر دیا، تاکہ اگر دشمن بے خبری میں آئیں تو مدینہ کو بغیر حفاظت کے نہ پائیں۔ ان لشکروں کے علاوہ خود بھی پوری طرح تیار تھے کہ اگر مدینہ پہ حملہ ہوا تو میں خود لڑوں گا۔ وہی ہوا کہ وہ قبائل جو کہ سرکش ہو چکے تھے، بنی عیس اور بنی زبیان ان کا نام تھا، وہ جب چلے حملہ کرنے تو ان کو راستے میں مدافعت پیش آئی، اور صبح کے وقت حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پرسنلی بھی نکلے جنگ کے لیے، ان کا پیچھا کیا، ان کے ساتھ جنگ کی، اور یوں اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اب ایک طرف مدینہ محفوظ ہو گیا، اور دوسری طرف جو شام کی طرف لشکر گیا تھا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں وہ نہایت کامیاب ہو کے لوٹا، بہت سا مال غنیمت دلائے، اور اس کا بہت بڑا نفسیاتی فائدہ یہ ہوا کہ تمام قبائل پہ ایک روب پڑ گیا کہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ اتنے ہی منتظم، اتنے ہی بہادر اور اتنے ہی قوت والے ہیں، اور ان کی طرف مزید کوئی حملہ کرنے کا ارادہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ بہت مختصر عرصہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا خلافت کے لیے، 2 سال 3 ماہ اور 10 دن، ٹوٹل ٹائم پیریڈ 2 years 3 months and 10 days اونلی، لیکن اتنے کم وقت میں اتنا زیادہ کام کر گئے، اور ایک بہت اسٹرانگ حکومت پرووائڈ کر گئے جس کے اوپر بعد کے خلفاء نے خوب کام کیا، اور اسلامک امپائر دور دور تک فلرش کرتے چلی گئی۔ ان دو مسائل کے علاوہ ایک تیسرا مسئلہ جو ان کی خلافت میں اٹھا وہ تھا جھوٹی نبوت کے دعوے دار۔ کئی لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بظاہر مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے بعد میں نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ ایک تو ان میں سے جو مسلمہ کذاب تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں ان کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے تعلیم حاصل کر کے گیا، اور بدنصیبی آپ دیکھیے کہ اس صحبت کے باوجود بدنصیب ہوا اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ کچھ آیات اور کچھ نمازیں اپنی بنا کے اس نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اور بہت جلدی اس کے بہت سے فالوورز بھی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس نے خط لکھا تھا کہ آدھی آدھی ریاست بانٹ لگے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ اللہ کی زمین ہے، جسے چاہے وارث بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اس کو اور موقع ملا، اور اس نے اپنے فالوورز کو اسٹرانگ کیا اور پوری ایک آرمی بنا لی۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجیں بھیجی، اور بالآخر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح ملی، اور مسلمہ کذاب مارا گیا۔ مسلمہ کذاب کے علاوہ اور بھی لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان میں طلحہ اسدی اور مزید لوگ تھے۔ اہم بات یہ ہے کہ عورتیں زندگی کے ہر شعبے میں مردوں کے شانہ بشانہ رہی ہیں، اور اس شعبے میں بھی عورتیں پیچھے نہیں رہی۔ ایک خاتون جس کا نام سجاہ تھا، اس نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبیہ ہوں، انتہائی ہوشیار عورت تھی، آخر میں آ کے مسلمہ کذاب سے مل گئی۔ ان دونوں نے مل کے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، اور ان دونوں کی طاقت میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ اس نے مسلمہ کذاب سے شادی کر لی، اور ان دونوں نے اپنی شادی کی خوشی میں صبح اور رات کی نمازیں معاف کر دیں، لیکن مسلمہ کذاب مارا گیا اور سجاہ کا بھی زور ٹوٹ گیا، اور یہ خطرہ ختم ہوا۔ چوتھا مین مسئلہ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آیا تھا وہ تھا عام بغاوت اور ارتداد، اپوسٹسی، یعنی بہت سے مسلمان مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے، اور بہت سے باقی جو حکمران تھے جو مسلمانوں نے ہی بھیجے تھے، انہوں نے بغاوت کر کے اپنے انڈیپینڈنٹ سٹیٹس ڈکلیئر کر دیں۔ ان سب کے خلاف انہوں نے فوجیں بھیجی، اور اس مصیبت کو بھی ختم کیا، ٹوٹلی کرش کیا اس ریبیلین کو، اور جو مرتدین تھے ان کو یہ کہلا کے بھیجا کہ مجھے ان لوگوں کے حالات معلوم ہوئے ہیں جو پہلے مسلمان ہوئے تھے مگر اب دین سے ہٹ گئے ہیں، इन्होंने दर हकीकत खुदा को पहचाना ही नहीं और वो शैतान से करीब हो गए हैं, हालांकि वो इंसान का दुश्मन है। मैं तुम्हारे पास महाजरीन और अंसार का एक शख्स फौज के हमरा रवाना कर रहा हूँ जो तुम्हें खुदा की तरफ बुलाएगा। जो शख्स उसकी बात मान लेगा वो उसे कत्ल ना करेंगे और ना उससे लड़ेंगे, और जो बाज ना आया तो उसके खिलाफ तलवार उठाएंगे और किसी से इस्लाम के बगैर कुछ भी कबूल ना किया जाएगा। मैंने अपने कासिद को हुक्म दिया है कि मेरी इस तहरीर को आम लोगों में सुना दे और ये निशानी मुकर्रर की कि जिस बस्ती में से अजान की आवाज आएगी उनसे तारुज किया जाएगा। ये याद रखिए कि ये मुसलमानों की बस्तियों की तरफ अहकाम जा रहे हैं जो लोग ऑलरेडी मुस्लिम थे और फिर इस्लाम से हट गए थे। उसका फायदा यह हुआ कि बहुत से लोग तो वैसे ही वापस इस्लाम की तरफ आ गए और जो कुछ नहीं माने उनके साथ थोड़ी बहुत फौजी कार्रवाइयां हुई और यूं ये मसला भी खत्म हो गया। जो बागी लोग थे वो भी सारे ठीक हो गए, और जो एक और मेन मसला था वो था मुनकरीन ज़कात। कुछ मुसलमान कबाइल ने ये कहा कि हम मुसलमान तो हैं, तमाम फराइज पूरे करेंगे लेकिन ज़कात नहीं अदा करेंगे। हजरत अबूबकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फैसला किया कि इनके खिलाफ फौज भेजी जाएगी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि इनके खिलाफ तलवार कैसे उठा सकते हैं जबकि ये मुसलमान हैं और कलमा गो हैं। हजरत बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, खुदा की कसम, जो शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक बकरी का बच्चा भी जकात में देता था, अगर वो उससे इनकार करेगा तो मैं उसके मुकाबले में जहाद करूंगा। और खुद तैयार हो गए कि मैं खुद जाता हूँ। लिहाजा इन फौजी कार्रवाइयों के बाद ये फितना भी खत्म हो गया, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ज़कात एक अहम रुकन है, हमारे दीन और ईमान का हिस्सा है, और अगर एक रुकन से भी हम ओपनली इनकार करते हैं तो हम इस्लाम को फिर पूरी तरह कबूल ही नहीं करें, और ये एक बहुत बड़ा फितना था। अगर इसको उस वक्त ना दबाया जाता आज न जाने और कितने फितने उठ जाते। आप इनकी हिम्मत देखिए, इधर ये अंदरूनी मसाइल हैं और उसके साथ साथ बैरूनी फतूहात का दरवाज़ा खोल दिया। ये नहीं सोचा कि अभी ये मसला तो ख़त्म हो जाए फिर दूसरा मसला मैं छेड़ूंगा। एट द सेम टाइम इराक और शाम की तरफ अपनी फौज ने रवाना कर दी और बड़ी मशहूर जंगें हुई जिनमें बहुत से मशहूर जर्नैल हैं। सबसे बड़ा और अजीम कारनामा उनके दौरे खिलाफत का तदवीन कुरान है, द कंपाइलेशन ऑफ कुरान। ये याद रखना चाहिए हमें कि कुरान पूरा का पूरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हो चुका था। किस सूरत को कहाँ लिखना था, किस आयत को कहाँ लिखना था, ये सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के मुताबिक तमाम चीजें लिखवाई हुई थी। सिर्फ बात ये थी कि कुरान एक बुक फॉर्म में नहीं था, स्कैटर्ड था, कहीं पत्थरों पे था, कहीं रख के तने की छाल पे था, कहीं लेदर पे, मुख्तलिफ चीजों पे, ऊंट की हड्डियों पे लिखा गया था। जो जंग यमामा हुई थी हजरत बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, जो मुसलमा कजाब के खिलाफ हुई थी, इसमें बहुत से हुफाज जो सहाबी थे शहीद हो गए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु घबराए हुए आए और उन्होंने हजरत बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को मशवरा दिया कि अगर इसी तरह हाफिज शहीद होते रहे तो मुझे खतरा है कि कहीं कुरान मिट ना जाए, आप इसको इकट्ठा कर लीजिए। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह से बहुत दुआ की और बिलाखिर उनका दिल इस बात से मुतमईन हो गया कि हाँ ये काम कर लेना चाहिए। लिहाजा उन्होंने मुख्तलिफ सहाबा कराम को बुलाया, वो जो कातबीन ने वही थे उनको भी, और बहुत से मशवरों के साथ और नहायत केयरफुली कुरान की हर हर आयत पे कम से कम दो गवाह बुलाए जाते, वो गवाही देते कि हाँ ये यहाँ है, यही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाई है। उसके बाद ये पूरा मसहफ या एक बुक तैयार हुई और फिर वो एक मेन मास्टर कॉपी बन गई कुरान पाक की, और कुरान पाक बुक फॉर्म में महफूज कर लिया गया। खलीफा हैं, कहीं फौज भेज रहे हैं, कहीं फतुहात हो रहे हैं, कहीं शाम और इराक के उस वक्त की सुपर पावर्स के साथ टक्कर ले रहे हैं, लेकिन अंदर अपना क्या हाल था? कि जब खलीफा बने तो हमसायों की कोई बच्चियां थी जिनकी बकरी का दूध दोहा करते थे। उस बच्ची ने कहा, आप तो खलीफा बन गए हैं, अब हमारी बकरी का दूध कौन दोहेगा? इन्होंने कहा, खिलाफत मुझको मखलूक की खिदमत से कभी नहीं रोक सकती। खलीफा वक्त अमीरुल मोमिनीन उन बच्चों की बकरी का दूध दोहा करते थे और रियाया की खबरगीरी करा करते थे, और खशियत का ये आलम था जब कुरान पाक पढ़ते तो रोते रोते हिचकी बन जाती थी। एक सहाबी कहते हैं कि मैं इनके साथ था और कहीं सामने बाग था, चिड़ियां थी, चिड़ियों को देख के कहने लगे, ऐ चिड़ियों, तुम कितनी खुश नसीब हो, चरती हो, चुगती हो, सैर करती हो और आखिरत के हिसाब से भी बेन्याज हो। और रोते और कहते, काश मैं दरख्त होता, काश मैं परिंदा होता कि मेरा हिसाब ना लिया जाता। आखिरी वक्त में सख्त बीमार हुए, अपनी बेटी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुला के कहा, आज कौन सा दिन है? उन्होंने कहा, दोशंबा। कहने लगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन फौत हुए थे? आप देखें, आखिरी वक्त में भी दोस्त की याद। उन्होंने कहा, दोशंबा। ख्वाहिश का इजहार किया कि अल्लाह मुझे इसी दिन मौत दे दे। उसके बाद उनसे कहा कि देखो, मेरे जिस्म पे जो चादरें हैं इन्हीं को धो के मुझे कफन दे देना। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रो पड़ी, कहने लगी, अब्बा जान, क्या हम अब ऐसे हैं कि आपको नया कफन भी नहीं दे सकते? कहने लगे, नहीं, नए कपड़े का हकदार तो जिंदा इंसान है, मुर्दा के जिस्म के लिए तो खून और पीठ है, मेरे लिए पुराना ही कपड़ा ठीक है। इस्लाम से पहले 40,000 अशरफियां पर्सनल इनकी नेट रिजर्व फंड थी, और जिस वक्त फौत होने लगे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को दूसरा खलीफा नामजद किया तो कहने लगे, देखो मेरे सरमाए में से क्या क्या कुछ है। बताया गया कि गुलाम, एक लौंडी, एक या दो ऊंट और शायद एक चादर थी। कहने लगे, जैसे मैं मरूं ये बैतुल माल से मुझे मिला हुआ है, ये दूसरे खलीफा का हक है, ये उनको पहुंचा देना। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब वो चीजें पहुंचाई गईं तो वो रो पड़े और कहने लगे, ए अबू बकर, अल्लाह आप पे रहम करे, आपकी जोहद का ये आलम, इतने बड़े खलीफा और बस ये छोड़ के जा रहे हैं। बिलाखिर खलीफा वक्त अमीरुल मोमिनीन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ। उनकी वफात से पहले चंद सहाबा ने आके कहा कि आप हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा मुकर्रर कर रहे हैं, हालांकि आप उनकी मिजाज की सख्ती से खूब वाकिफ हैं, आप जानते हैं कि वो मिजाज के तेज हैं, आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? कहने लगे, मैं अल्लाह से कहूंगा, ए अल्लाह, मैंने उस बंदे को खलीफा नामजद किया जो उस वक्त तेरे बंदों में सबसे बेहतरीन था। आखिरी वक्त तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते रहे, बैतुल माल से सिर्फ इतना लेते थे कि मुख्तसर सा लिबास, खाना और बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए, और यूं नहायत अमानत सदाकत के साथ ये खलीफा दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग बुनियादें दुनिया में छोड़ गए इस्लामिक एम्पायर की कि फिर बाद के खलीफा ने नहायत आसानी से उसको वास्त किया और बहुत जल्द इस्लाम दुनिया के गोशे गोशे तक फैल गया। यही है हमारे हीरोज और इन्हीं को हमने फॉलो करना है, यही वो लोग हैं जिन पे अल्लाह का इनाम नाजिल हुआ। अल्लाह ताला हमें उनका रास्ता अपनाने की तौफीक दे। आमीन।